ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को अनेक विकास परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। इस इकाई को 8469 करोड़ रूपये की लागत से बनाया जाएगा। श्री मोदी ने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोबरधन संयंत्र की आधारशिला रखी तथा रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। रेवाड़ी बाईपास परियोजना को भारतमाला योजना के तहत हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर 1069 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्णलाल पवार तथा श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे। इससे पहले कल सुबह प्रधानमंत्री ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी तथा हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून में किए गए हाल के परिवर्तनों का बचाव करते हुए कहा कि इनसे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा और जनजातीय भूमि को संरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुश्री बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लागू न किए जाने वाला बयान संविधान के विरुद्ध है। श्री द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर हाल ही में संसद द्वारा पारित अधिनियम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजुमदार ने घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लिखा है कि यह घटना केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मानवीय संकट का मुद्दा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थिति से प्रभावित निर्दोष हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए राज्यपाल को बिना देरी के कदम उठाने की आवश्यकता है। तटरक्षक बल ने गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर 1800 करोड़ रुपए मूल्य की 300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर तटरक्षक बल ने विशेष अभियान के दौरान गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास एक जहाज को रोका। जहाज में सवार संदिग्ध तुरंत ही मादक पदार्थों को समुद्र में फेंक कर भाग निकले। मादक पदार्थों को बरामद कर उन्हें जांच के लिए पोरबंदर लाया गया है। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कल रात भीषण आग लग गई, जिससे मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घटना के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख अय्यर अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 200 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है। गंभीर मरीजों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है, जबकि कुछ मरीजों को सिविल अस्पताल ले जाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका की जानी मानी गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने कल ब्लू ओरिजिन के रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भर के इतिहास रचा। इन महिलाओं को लेकर ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-31 अंतरिक्ष यान ने भारतीय समय अनुसार कल शाम 7 बजे अमरीका के पश्चिमी टेक्सास से उड़ान भरी और लगभग 10 मिनट की यात्रा के बाद सभी को सुरक्षित वापस लेकर लौट आया। ब्लू ओरिजिन अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। उड़ान के दौरान महिला यात्रियों को पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से भी ऊपर कर्मन रेखा के पार ले जाया गया। कर्मन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को बताने वाली काल्पनिक रेखा है। IPL 2020 क्रिकेट मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स पर 5 विकेट से जीत दर्ज कर 5 मैचों की अपनी हार का सिलसिला खत्म किया।